ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। प्रक्षेपण की प्रक्रिया सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू होगी। इसके साथ ही स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास की परियोजना का कार्य पूरा हो जाएगा और ये छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए सेवा देने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। पीएसएलवी की तुलना में 10 मीटर छोटे रॉकेट एसएसएलवी का इस्तेमाल पृथ्वी की निचली कक्षा में छोटे कम वजन वाले और नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार राष्ट्र को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के इरादे से सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए शासन में सुधार आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि बैंकिंग, पर्यटन, एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्र में नई तथा आधुनिक प्रणाली स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप में आया उछाल देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि रूस भारत के साथ खासतौर पर विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के संबंधों को बहुत महत्व देता है और संबंधों को विकसित करने का इरादा रखता है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि इससे निसंदेह दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण हित पूरे होंगे और सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती मिलेगी। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और सफलता तथा भारत के नागरिकों के लिए खुशी और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन वे हैदराबाद में कान्हा शांतिवनम जाएंगे। दूसरे दिन उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में अक्षरा विद्यालय परिसर और कौशल विकास केंद्र, स्वर्ण भारत ट्रस्ट और मुप्पा परपू फाउंडेशन का दौरा करेंगे। इसके बाद वे वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 23वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में 26 लोगों की पहचान की गई है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म एवं हत्या तथा उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ ने कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए देशभर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। चिकित्सा संस्था आईएमए ने एक बयान में कहा है कि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा इस घटना के विरोध में आज कोलकाता में मौन कैंडन मार्च निकालेगी। ये मार्च पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीति श्रीनिवासन के नेतृत्व में शाम 6 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के बाहर निकाला जाएगा। इसमें पार्टी के राज्यसभा सदस्य दर्शन सिंह, पश्चिम बंगाल प्रभारी पूजा कपिल मिश्रा के अलावा संगीता यादव, गीता शाक्य तथा इंदु बाला गोस्वामी जैसे राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का कल निधन हो गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उत्कृष्ट एरोस्पेस वैज्ञानिक डॉक्टर अग्रवाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पद्मभूषण से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल ने भारत की लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत कल 30वें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। विदेश मंत्रालय ने वक्तव्य में बताया कि इसमें पिछले सम्मेलनों में विश्व की विभिन्न जटिल चुनौतियों पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ने का काम दिया जाएगा। इन चुनौतियों में संघर्ष, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से विश्व का प्रभावित होना शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।